یہاں اس آیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک کی خوبصورت ترین آیت ہے. کس طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی دعوت دی ہے. کیا اسلام کوئی کمرہ ہے جس میں داخل ہوا جائے؟ لیکن اس آیت کو اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ حج کی آیت کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کے کناروں پر, بنیادی طور پر اس کا مفہوم دیکھیں تو کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں. اب آپ اسلام کو دو طرح سے دیکھیے, ایک ہے وہ شخص جو کفر پہ تھا, نان مسلم جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں, اب اس کو اسلام پہ آنا ہے, اسلام میں آنا ہے. اس کا دل اب مان رہا ہے کہ واقعی اسلام ہی وہ خوبصورت دین ہے جس کی سب کو ضرورت ہے, لیکن وہ ڈرتا ہے, کبھی خاندان سے, کبھی برادری سے, کبھی قبیلے اور کنبے سے ڈرتا ہے. لیکن جب کوئی شخص مسلمان گھر میں ہونے کے باوجود اسلام پہ عمل کرنے سے ڈرے, کوئی چیز جو اس کو اچھی لگے اس کو مان لے, کوئی چیز اس کو بری لگے, مشکل لگے تو اس کو نہ مانے, تو ایسے شخص کو اسلام نے نفاق کا نام دیا ہے اور وہ منافق کہلاتا ہے. ہم پیچھے سورہ بقرہ میں دیکھ چکے. اسی طرح انسانوں میں کچھ لوگ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ اس قسم کی حد بندیاں کی ہوتی ہیں کہ یہ چیز ہم بالکل مانیں گے, اس پہ تو ہم بلکہ پورے جوش سے بات کریں گے, اس کے خلاف تو ہم کسی کو بولنے بھی نہیں دیں گے, اور یہ دو تین باتیں اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے. بعض لوگ پورا دین پڑھ لیتے ہیں, بلکہ بعد میں پڑھانے بھی لگ جاتے ہیں, لیکن دین کی کچھ باتوں کو دین ہی نہیں مانتے. پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ دین کی باتوں کو نہیں مانتے تھے. آج تو خیر سے یہ ترقی ہو گئی کہ جن باتوں کو لوگ مانتے نہیں ہیں نا, اس کو دین بھی نہیں مانتے. فرق سمجھیے گا. آپ کو پتہ ہے یہ چیز کرنی چاہیے, آپ نہیں کر رہے, آپ کے دل میں گلٹ تو ہوگا نا. کبھی نہ کبھی اللہ توفیق دے گا, بندہ توبہ کرے گا, پلٹ آئے گا. لیکن جس بندے نے کہہ دیا کہ یہ تو دین ہے ہی نہیں, جتنا انٹلیکچوئل دور بڑھتا جا رہا ہے نا, پڑھے لکھے لوگ دین کی نمائندگی کرنے والے ہیں, وہاں یہ فتنہ بھی اب عام ہوتا جا رہا ہے کہ صریحاً متفق علیہ چیزیں جو 14 صدیوں سے کبھی کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا, ان سب کے بارے میں بھی اب ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. مثلاً جہاد ہے ہی نہیں اسلام میں, ایسے ہی مسلمانوں نے اپنے لیے یہ چیزیں کھڑی کر لی. بعض لوگ داڑھی کو, بعض پردے کو, بعض چہرے کے نقاب کو اس طریقے سے ٹھکراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ واقعی یہ دین نہیں ہے. تو یہ فتنہ جو ہے, یہ ایک ایسا فتنہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان ہی نہیں برباد ہوتا, بلکہ پورے دین کو وہ خراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بڑے پیار سے, بڑی محبت سے ایمان والوں کو ان کے ایمان کی نسبت سے پکارتا ہے, یا ایھا الذین آمنو. اس محبت کو اگر ہم دیکھیں نا, تو واقعی ایسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے بڑی محبت ہے. کہا ایمان والو, میں تمہیں ایمان سے پکار رہا ہوں, تمہیں ایمان کی نسبت بڑی پیاری لگتی ہے نا. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں, ان سب سے زیادہ کسی کا اگر خوبصورت تعارف ہو سکتا ہے تو وہ ایمان کا تعارف ہے, ایمان کے ذریعے سے. تو کیا کرو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے کہ اسلام کو پوری طرح اپنانے کی کوشش کرو, 24 گھنٹے کے مسلم بن جاؤ, تمہاری پوری زندگی اسلام کے رنگ میں رنگی بھی دکھے, صبغت اللہ کی چلتی پھرتی تصویر بنو. کان خلقہ قرآن, اللہ کے نبی کے لیے جیسے کہا گیا کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے, آپ کا تو پورا اخلاق جو تھا وہ قرآن کے مطابق تھا, تو مسلمانوں آج تم نے کیوں اس نبی کے فالوور ہونے کے دعوے کے باوجود اسلام کو خانوں میں بانٹ دیا؟ تم نے آج کیوں اسلام کو صرف مسجد میں بند کر دیا؟ تم جمعے کے دن کے ساتھ صرف اسلام کی باتیں کرتے دکھتے ہو, رمضان آتا ہے تو تم مسلمان دکھتے ہو, حج کا دن آ جائے تو تم مسلمان دکھتے ہو. نہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام, سلم, اور لفظ اسلام جو ہوتا ہے یہ متی ہونے کے لیے آتا ہے, سبمٹ ہونے کے لیے. نام سے مسلمان ہو تو اب کام کے بھی مسلمان ہو جاؤ, حال حلیے کے مسلمان بن جاؤ, تمہاری معیشت, تمہاری معاشت ساری کی ساری اسلام کے مطابق ہو. عبادت کرتے ہو اگر اللہ کے حکموں سے, تو شادیاں بیاہ بھی اللہ کے حکموں سے کرو, تمہارے بزنس, تمہارے رشتے, تمہارے ناطے, تمہاری تعلیم, تمہارا پہننا اوڑھنا, تمہارا ڈریس کوڈ, ایک ایک چیز پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو. گویا کہ اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ پارٹ ٹائم مسلم سے ہٹ کر فل ٹائم مسلم بن جاؤ. دنیا میں کیا پسند کرتے ہیں ہم؟ हर चीज़ हमें कैसी अच्छी लगती है, पूरी। आपको अगर कोई चीज़ दे और वो आधी टूटी भी हो, एक सॉक दे दे, कैसा लगेगा? शलवार ना हो, सिर्फ शर्ट दे दे, अच्छा नहीं लगता ना? तो ज़रा सोचें कि हम अल्लाह को जब अधूरा दीन देते हैं, उसको कैसा लगता होगा? और किसी को आधा देना या आधे दिल के साथ पूरा देना दोनों एक ही बराबर होती हैं। अल्लाह की ज़ात जिस तरह शिर्क से पाक है ना, इसी तरह अल्लाह को इतात के मामले में भी शिर्क पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने हम सबको दीन फितरत पे पैदा किया, और जो भी अहकाम दिए हैं ये 110% काबिल अमल हैं। ये बात लिख लें। कोई ये कहते हैं ना कि इस्लाम का फलां हुक्म काबिल इतात नहीं, तो वो अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम लगाता है। क्या इल्ज़ाम लगाता है? कि नऊज़ु बिल्ला अल्लाह को समझ ही नहीं थी, ऐसे ही उसने कानून बना दिए। सिर्फ बात को समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप मुझे उस्ताद कहते हैं ना, मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जो कल सबक हमने पढ़ा था, आइए ज़रा उसमें से सुना दें। बिल्कुल बजा है। अब आप नहीं याद करेंगे तो आपको फील होगा कि मैंने गलत कहा, यानी मैंने गलत नहीं किया, मुझे याद करना चाहिए था। लेकिन बिलफर्ज़ अगर हम इस वक्त आयत 208 कर रहे हैं सूरत अल बकरा की, और मैं आप में से किसी से कहूँ कि चलें आप आयत नंबर 220 का ट्रांसलेशन सुनाएं, एक लम्हे के लिए आप ज़रूर सोचेंगे कि उस्ताद क्या कह रही हैं, जो हमें पढ़ाया ही नहीं वो पूछ रही हैं। बार बार मैं इसरार करूँगी तो आपके दिल में मेरे बारे में ग्रज आएगा कि ये नऊज़ु बिल्ला बेवकूफ़ हैं, ये इनको समझ नहीं, पता नहीं कैसी बात है, जो पढ़ाया नहीं वो हमसे सुन रही हैं। छोटा बच्चा है आपके सामने 2-3 साल का, आप उसको कहें कि आप ज़रा 20 किलो का घी का डब्बा उठाएं, बेवकूफ़ी की बात है ना? जब कोई बंदा हमें कोई ऐसा हुक्म देता है जो हमारी वसत से बाहर हो, हमारी कैपेसिटी से ऊपर हो, बियॉन्ड आवर लिमिट्स हो, तो हमारे जहन में ला मुहाला ना चाहते हुए भी आ जाता है कि ये हुक्म देने वाला थोड़ा सा एबनॉर्मल है। तो जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह की को दीन की फलां बात काबिल अमल नहीं, तो क्या सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा दीन दिया जो उठाया ही नहीं जा सकता? वो तो कहता है कि लोगों के मा जअलल्लाहु अलैकुम फिद दीन मिन हरज, उसने तो दीन के मामले में तुम पे कोई तंगी नहीं डाली। आगे हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आखिरी आयतों में आएगा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला तो किसी बंदे को उसकी वसत से ज़्यादा आजमाता नहीं है। हाँ, हम खुद अगर ढीले हो जाएं तो और बात है। अल्लाह की ज़ात हमें ये बताती है कि जब कोई बंदा हकीकत में मुसलमान होता है ना, तो उसको अपना सब कुछ अल्लाह को देना चाहिए। आप देखिए कि हमें तो आधा दिल किसी का अच्छा ही नहीं लगता। बीवी बैठी हो शौहर के पास और शौहर सोच कुछ और रहा हो, तो कहती है आप मेरे पास हो के भी मेरे पास नहीं है। आप अपने ही बच्चे को कोई बात कह रहे हो और बच्चे का ध्यान गेम में ही हो, टीवी देख रहा है, दोस्त से बातें कर रहे, तो आपको गुस्सा आता है। आप कहते हैं क्या बात है, आप मैं बात कर रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ पहुँचे। मैं जब हमें अधूरी मोहब्बतें नहीं पसंद, हमें अधूरी चीज़ें नहीं पसंद, तो ज़रा सोचिए कि अल्लाह को वो मुसलमान कैसे लगेंगे जो शर्तें लगा के इस्लाम की तरफ आए। अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि देखो शर्तें लगा लगा के इस्लाम में मत आओ, बातें ना बनाओ कि ये अल्लाह करेगा तो करेंगे। तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे नज़रियात, तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारे मामलात, तुम्हारी कोशिशें, ये सब की सब इस्लाम के ताबे हों। ऐसा ना हो कि तुमने अपनी ज़िंदगी को खानों में बांट रखा हो, उसमें एक छोटा सा खाना इस्लाम के नाम का लगा दो और बाकी सारी तुम दूसरों की लगा दो। देखिए जहाज़ है ना, जहाज़ के अंदर सारे पुर्जे जहाज़ के लगेंगे तो फिर ही वो उड़ेगा ना। आप जहाज़ के अंदर गाड़ी का टायर लगा दें, चलेगा वो? हल्का सा पुर्जा बदल दें। आज हम इस्लाम के बारे में ये सोचे बैठे हैं कि इस्लाम कोई काबिल अमल दीन नहीं है, और कोई दिखता भी नहीं है हमें दुनिया में इस तरह का कोई अपने इर्द गिर्द नमूना के जिससे लगे कि वाकई इस्लाम पे अमल करने के बाद भी कोई कामयाब है। तो इसकी वजह पता है क्या है? कि हम जहाज़ के अंदर मोटरसाइकिल के टायर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम को उसकी असल शक्ल पे जब हम दुनिया में पेश करेंगे ना, इस्लाम बिल्कुल चलेगा, 110% चलेगा। फिर आप देखिए कि जहाज़ मौजूद हो, रनवे मौजूद ना हो, फिर भी जहाज़ नहीं उड़ सकते। भाई जहाज़ है, चलाएं कहाँ? यही पहचान इस वक्त दूसरी तरफ है। इनफरादी तौर पे आपको कुछ लोग इंडिविजुअल्स के लेवल पे बहुत प्रैक्टिकल दिखेंगे, उलमाए कराम, फुकाहा हैं, कुछ मुबल्लिगीन, इमाम मस्जिद, कुछ लोग नेक, जिनको भी लोग अच्छे नाम से सोचते हैं, वो 100% कुरान, इस्लाम, दीन के अंदर है, लेकिन सक्सेसफुल कम दिखते हैं लोगों को। वजह क्या? वो रनवे ही नहीं है, वो दुनिया ही नहीं है जिसके अंदर एक सच्चे मोमिन की कदर हो, एक इस्लाम वाले को लोग सक्सेसफुल समझें। तो लिहाजा उदखुलू फिस्सिल्म काफा का मतलब क्या है कि थोड़ी दिली से नहीं पूरे दिल से इस्लाम की तरफ आओ, तुम्हारी शादी हो पता चले ये मुसलमान की शादी है, तुम्हारी तालीम हो उस पर इस्लाम का रंग छलके, तुम दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ बिल्कुल अल्लाह ताला की तुम मोहब्बत चीज़ में आओ। अब थोड़ा सा इसको इमेजिन करें, अपने माइंड में लाइए कि इस्लाम एक कमरा है, जैसे ये एक हॉल है ना हम जहाँ बैठे हैं, इस हॉल के अंदर आप में से मुख्तलिफ साथी मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं, ये इधर कोने में हैं वो उधर हैं कुछ बीच में, अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आ जाए बिलफर्ज, बाहर से कोई जानवर आ जाए अंदर कुछ शोर आ जाए, सबसे पहले रिस्क में कौन है? कोई आएगा तो रिसेप्शन पे गन रखेगा ना, सबसे महफूज कौन है? मिडल वाले। जो लोग दीन के बिल्कुल अंदर आ जाते हैं ना वो बिल्कुल सिक्योर होते हैं। कश्ती का सोच लें, कभी आप बैठे हो जब कश्ती हिलती है ना तो जो इस किनारे पर होते हैं वो भी चीखते हैं हाय मैं डूबने लगा, कश्ती इधर हुलारा लगाती है तो इधर वाले डूबते हैं और जो मिडल में होते हैं वो नहीं डूबते, उनको ख़तरा कम है, इसीलिए जिन लोगों को चक्कर वगैरह आए तो कहते हैं इनको को मिडल में बैठे। आप प्लेन पे बैठे हैं, कुछ लोगों को फोबिया होता है तो उनको कहा जाता है कि ना बिल्कुल पीछे बैठे ना बिल्कुल आखिर में बैठे, मिडल में बैठे, यहाँ झटके कम लगते हैं। बीसियों मिसालें मौजूद हैं। अंदर रहने वाला सिक्योर होता है, जो किनारों पे होता है ना वो दूसरों को भी इनसिक्योर करता है। चले इसी को अब फिर इमेजिन करें, आप इस कमरे में थे, आप इस कमरे को यहाँ से खाली छोड़ दें इधर से छोड़ दें बिल्कुल दरवाजे में लटक जाएं। असल में इमेजिनेशन में ऐसी शख्स आता है कि कोई एक पाँव अंदर रखा हुआ एक बाहर, भला क्यों, दिल चाहा तो अंदर आ जाएंगे, देखते हैं क्या हो रहा है अंदर, चलो अच्छी बात है मज़े किए बैठते हैं, और अगर ना पसंद आई कोई बात अच्छी ना हुई तो बाहर निकल जाएंगे नज़र चुरा के पीछे पीछे बैठते हैं। अब आप दरवाजे पे लटके हुए हैं, हो सकता है पीछे और स्टूडेंट्स आ रहे हो, वो जब आपको दरवाजे में लटका हुआ देखेंगे या रुका हुआ देखेंगे क्या सोचेंगे कि हाउस फुल है कमरा पूरा भरा हुआ है, तो ये तो पहले ही बाहर है, वो वहीं से गाड़ी में से वापस चले जाएंगे जी के रूम की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। कौन जिम्मेदार बना? दरवाजे में खड़े हुए लोग, हालांकि अंदर जगह थी, राइट। इसी तरह वो लोग जो दीन इस्लाम के किनारों पे रह के दीन को मानते हैं ना वो आने वालों के रास्ते रोक लेते हैं। कुछ मुसलमान जो सिर्फ दीन को बिल्कुल एक किनारों की चीज़ों से ले के रखते हैं ना तो गैर मुस्लिमों को भी वो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करने पे मजबूर करते हैं। जो बंदा किनारे पे होता है ना वो दूसरों को बेचैन करने का ज़रिया बनता है। आप फील करेंगे कि हर चीज़ अपने मिडल में अच्छी होती है। चलें एक और मिसाल देती हूँ, पिज़्ज़ा तो आप सभी शौक से खाते होंगे, सबसे बेहतरीन पार्ट पिज़्ज़े का कौन सा होता है? मिडल, सॉफ्ट अंदर मैक्सिमम चीज़ और जो भी उसके अंदर मीट है, और किसी को अगर सिर्फ पिज़्ज़े के किनारे तोड़ के दे दिए जाए खाते, आलू वाली रोटी कीमे वाली रोटी, रोटी के किनारे अक्सर ही लोग छोड़ देते हैं, बस तो इतनी सॉफ्ट ब्रेड होती है उसके किनारे काट के फेंकते हैं कि हमें ये नहीं खाना, किनारों का टेस्ट अच्छा नहीं होता। याद रखिए जो लोग इस्लाम को बाहर रह के चेक कर रहे होते हैं ना उनको इस्लाम का टेस्ट बड़ा बुरा लगता है, उनको इस्लाम सख्त लगता है, रिजिड, टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्टिक, और ये कोई गैर मुस्लिम नहीं होते, ये अपने ही होते हैं। हमारे ही लोग जब इस्लाम के सोचिए ना किनारे पर खड़े होकर उसको तोड़ना चाहते हैं तो क्रस्ट तो टूटेगा ही नहीं, पिज़्ज़ा तो बड़ा सख्त है, आप कहते हैं आपको बनाना ही नहीं आता फेंको इसको, आप कहते हैं थोड़ा तो आगे आइए। आप जितना इस्लाम के रंग में रंगते जाते हैं ना आप उसके मिडल में आते जाते हैं ना तो आप इसको इस्लाम टेस्टी लगता है, आपको इस्लाम सॉफ्ट लगता है, आपको डिलीशियस लगता है, और जो खुद अपनी ज़ात पर इस्लाम को एक बैलेंस रवैये में अपनाता है ना उसको अपनी ज़िंदगी बड़ी मज़े की लगती है। जो बाहर खड़े होते हैं ना कहते हैं हाय नो पार्टी बोरिंग, हाँ कुछ नहीं हो, नो कोई डांसिंग, नो मूवी, नो वीडियोस, नथिंग, कुछ नहीं, हाय बेचारे मौलवी, हाय बेचारा, हाय कहाँ खुश रखेगा मेरी बेटी को, वो बाहर वाले रो रहे होते हैं उसको पता ही नहीं, वो कहते तुम अंदर तो आओ फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम कितना खूबसूरत है। यकीन करें अभी तो आप दूसरे पारे पे हैं ना, अभी आप एक उसी बात को इमेजिन करें कि कुरान पाक का भी सिर्फ़ एक कोना चखा है आपने, यानी आपने एक बाइट ली है पिज़्ज़े में से, आपको टेस्ट आना शुरू हो गया ना, आप इमेजिन करें कि जिस वक्त आप पूरे सही तरीके से इस इस्लाम के टेस्ट को लेंगे, इसको मैं इस तरह सोच रही हूँ कि जब डिफरेंट चीज़ें लोग डाल के कोई खाना बनाते हैं ना, मसलन डिज़र्ट्स होते हैं तो आप कहें थोड़ा लेते हैं ऊपर से, वो कहते नहीं नीचे से लें, सारा फ्रूट तो नीचे है, केक तो नीचे है, जेली तो नीचे है, फिर आप वो पूरा एक साथ लेते हैं तो फिर आप कहते हैं वाह बहुत टेस्टी है, ऊपर से चखे हो सकता है सिर्फ आपके मुंह में कस्टर्ड आ जाए, कोई बीच में से खाए सिर्फ केक आ जाए, नीचे से ले सिर्फ कुछ ना, पूरी चीज़ को इकट्ठा लें तो फिर टेस्ट आता है। आज के दौर में ये जो फैशन बन गया ना इस्लाम के बारे में, निकाब की बात करो, इस्लाम में औरतों का मुकाम क्या है, और करते भी वो लोग हैं जिनको उसके अलावा कुछ नहीं पता होता, कभी भी उन बातों का जवाब ना दें। वो ऐसे ही जैसे पिज्जे में से सिर्फ हरी मिर्च उन्होंने उठा ली, मुंह में डाले कि मुंह तो चलेगा, क्योंकि तुम्हें पिज्जा नहीं बनाना आता, देखो कितना कड़वा इस्लाम दिखाते हो। नहीं, आप पहले इसको पूरे को खा के तो देखें। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किस्म की जो तफसीरें होती हैं ना, ये लोगों को इस्लाम से दूर कर देती हैं। आप कुरान सीख रहे हैं ना, आपने फील किया कभी, आप आज कर सकते हैं एक्टिविटी और दूसरे पारे के एंड पे कर लें, ए टू जी कितने डिफरेंट टॉपिक कुरान की आयतों में आए हैं, आप जमा करें पहले पारे के दूसरे के। मेरा ख्याल है कि सिर्फ दो पारों में और सूरह बकरा पूरी होगी तो आप कह सकते हैं कि पूरे ही दीन की थोड़ी थोड़ी बातें आप टच कर चुके होंगे, डिटेल्स बाद में होंगे। वैसे अगले ही सबक में आप देखेंगे कि आप बिल्कुल ख़ानदानी मामलात शुरू होने वाले हैं। तो ये इस्लाम का पूरा टेस्ट है ना, और अगर आपको रोज़ एक ही टेस्ट खाने को मिले, हो सकता है कि आप भी बोर हो जाएं, आपके अब हमें पता चल गया कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन रोज़ ही कुरान में नमाज़ की बात आती है, तो क्या है कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ। तुम्हारी ख्वाहिशों पे पाबंदी लगती है तो लगाओ, लगानी पड़ेगी, मजबूरी है। आपको ओवन में पिज़्ज़ा रखना पड़ेगा, फिर ही पकेगा, जलेगा, फिर ही पिघलेगा, मेल्ट होगा। जब तक चीज़ मेल्ट नहीं होता, टेस्ट ही नहीं देता। वो सूखा अलग पड़ा रहे, आपकी मिर्चें अलग हों, आपकी केचप अलग हो, आपको पिज़्ज़े का टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह कम से कम एक बार मुझे इस ज़िंदगी में पूरे दीन को सीखने दे। अफसोस और दुख की बात है कि हमारी नस्लों की नस्लें इस्लाम को पूरा टेस्ट किए बगैर दुनिया से चली गई। फिर पिज़्ज़े की मिसाल देती हूँ, चाहे आपको कितनी भूख लग जाए। हाँ, आप देखिए कि आप ये कोई आज से कोई 8-10 साल बाद पहले की एक डिश बन गई ना, इटालियन पिज़्ज़ा, पहले जानता भी कोई नहीं था कोई। आज भी कुछ बूढ़े ऐसे हैं कि जो नहीं खाते, कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ये ना। अब आप बच्चों को पसंद है तो आप कहते हैं कि दादा भूख चख के तो देखें, वो कहते हैं मैं नहीं खाता, पता नहीं इसमें क्या है, मुझे तो सादी रोटी पका दो। वजह क्या है कि उन्होंने कभी चखा ही नहीं, और जो चीज़ चखी नहीं होती वो खानी मुश्किल लगती है। बिल्कुल इसी तरह से जिन लोगों ने इस्लाम, कुरान, इस हदीस, सुन्नत को समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, वो जब इसके बग़ैर ज़िंदगियां बाजार के दुनिया से चले जाते हैं ना, तो उसको आप समझ लीजिए कि आप यही कह सकते हैं कि जिसने चखा नहीं उसको उसका टेस्ट ही नहीं पता। कुरान के बग़ैर कभी भी इस्लाम का पूरा टेस्ट समझ नहीं आता। अब यहाँ से जो बात शुरू हुई ना, आप देखेंगे हमारे पूरे सबक में ऐसा ऐसा ये बात आती रहेगी। मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि देखो, वला तत्तबियू खुतुवात शैतान, मत शैतान के कदमों की पैरवी करो। अब यहाँ खुतुवात का लफ्ज़ आ गया, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। पहले सोचें कि इससे आपके जहन में एक किरदार आ रहा है ना, और हम जब शैतान का सोचते हैं ना तो हमारे जहन में आता है एक शख्स, पीछे टेल है, फिर आग लगी हुई है, और उसने पैंट शर्ट पहनी हुई और आके कह रहा है हेलो आई एम शैतान, है? क्योंकि खुतुवात का लफ्ज़ कदम है ना, खुतवत उनकी जमा है ये। हम जब कदम रखते हैं ना ज़मीन पे चलते हैं, आप देखिए कि कोई जंपिंग ना कर रहा हो, अदरवाइज हम क्या करते हैं, ये एक पाँव रखते हैं, फिर उसके बाद आगे दूसरा रखते हैं ना। ये मेरे हाथों को देखें, यहाँ एक कदम रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तो ये जो दो कदमों के बीच की जगह है ना, इसको अरबी ज़बान में खुतवा कहते हैं। अपनी ज़ुबान में हम समझने के लिए यहाँ कह देते हैं फुट स्टेप्स, कि शैतान के फुट स्टेप्स पर कदम ना रखो। अब सवाल पैदा होता है कि शैतान के कौन से कदम है जिस पे हम पांव रख के चल रहे हैं, तो शैतान के कदम क्या है कि शैतान इस्लाम के अंदर पूरा आने को मुश्किल करके दिखाता है। 3 घंटे मूवी के लिए बैठना आसान दिखाता है, और 3 घंटे कुरान के लिए बैठना वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल कर देता है। शैतान हमारे लिए इबादत को करना, अल्लाह की बातों को मानना, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना मुश्किल करता है। कहता है ये कैसे हो सकता है, आज के दौर में कैसे बंदा बच सकता है, लो इस माहौल में रह के कौन बचे, वेस्ट में रहने वाला इससे कैसे बचे। आज के भी ऐसी भी बातें होती हैं, कभी हमने तो ये सुना नहीं, हमने तो वो सुना नहीं। यानी जो ही एक बंदा पूरे का पूरा इस्लाम में आना चाहता है ना, तो शैतान फौरन उसके माइंड में जाके एकदम क्लिक करता है, कहता है होश करो, शादी नहीं होगी फिर तुम्हारी, सोच लो, फिर बैठी रहना अम्मा के घर। खाम खाबी इस उम्र में शौक आ गया इनको नेक बनने का, और ये दाढ़ी रख रहे हैं, इनको देगा कौन लड़की, देखते हैं फिर क्या होता है। यानी इस तरह वसवसे डालता है लोगों के दिलों में। एक खातून अच्छी वाली किताब कुरान से जुड़ी हुई थी, एकदम उन्होंने आना छोड़ दिया। पूछा भी क्या हुआ मसला, जो हकीकत खुली, कहने लगी कि किसी ने डरा दिए कि ये आप इतना ज़्यादा दीन में जो इन होती जा रही हैं तो आपके बच्चों के रिश्ते कैसे होंगे। तो मैं डर गई हूँ कि हाँ चलो बच्चों की शादियाँ मंगनियाँ हो लें तो फिर इस्लाम में पूरे आते हैं, हो जाती हैं। हमारी क्लासेस अमेरिका में जो थी तो उसमें सारी बच्चियाँ सुनती हैं, लेकिन जैसे मट्टी नरम होती है, कोई जल्दी गलती है, कोई देर से दाल गलती है। तो एक लड़की थी, उसने सबसे पहले हर चीज़ में अमल में आ गए, यानी जिसमें एक छोटी सी चीज़ आप पर निकाब को भी कह दें, बाकी तो पहले होती है, तो बहुत ही छोटी बात है। तो बहुत ज़्यादा एक जैसे नया एक उस सोसाइटी में ये एक बात थी ना कि ये कैसे हुआ, तो बहुत लोगों को ख्याल था कि इसकी शादी नहीं होगी, आप भला यहाँ रहते हुए कौन करेगा। और आपको पता है कि वो तीसरे नंबर पे थी अपनी बहनों में, कुरान के पढ़ने के दौरान ही उस सबसे नीचे वाली का रिश्ता तय हुआ, उसकी शादी होगी, दो बड़ी की बाद में हुई। ये कैसे हो सकता है? आप अल्लाह की माने, अल्लाह आपकी ना माने, जिसके हाथ में खजाने हैं वो खुशी से देगा या ना खुशी से देगा। देखिए कि माँ से चीज़ बच्चा लेता है ना, माँ बच्चे से खुश होगी तो ज़्यादा खुशी से देगी या नाराज़ होके देगी। हाँ कभी बच्चा बहुत तंग करे तो माँ गुस्से में फेंकती है चीज़, ले लो बस अब मेरे से कलाम ना करना। अगर नाफरमानियाँ करके हमने दुनिया की चीज़ें अल्लाह से ले भी ली तो क्या फ़ायदा होगा। कहा इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये दुश्मन है जो तुम्हें इस किस्म की बातें बताता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, लिहाजा इसकी बातों में आकर तुम खुद इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करने वाले ना बन जाओ। हाँ फिर इसके बाद अगर कभी कभी तुम इंसान हो, तुम्हारे इंसान होने के अंदर तुम अल्लाह ताला को पता है कि तुम इस किस्म के हो, कभी हो सकता है, तो अब क्या करो? इसका जवाब अगली आयत में है, 209, फ़ैन ज़लल तुम मिम बाति मा जातकुमुल बय्यिनात, फिर अगर डगमगा जाओ तुम, फिसल जाएं तुम्हारे कदम इस बात के बाद कि साफ हिदायतें आ गईं, कुरान पढ़ने लग गए, अब तुम्हें इस्लाम की बातें समझ आती हैं, ये सब कुछ आ गया तुम्हारे सामने, कोई बात नहीं। फ़ालमु अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, खूब जान लो, गौर करो कि अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। क्या मतलब है? कल तक और बात थी, तुम वो आज नहीं हो जो कल थे, यानी आज तुम वो नहीं रहे जो तुम कल थे। हकीकत यह है कि जब हम एक बार अल्लाह की मर्ज़ी को जान लेते हैं ना, उसके बाद हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। जब हम इन तब्दीलियों को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम बड़े प्यारे हो जाते हैं। छोटी सी मिसाल देती हूँ, एक औरत है, उसने कोई भी औरत वैसी बड़ी कीमती चीज़ है, लड़की कह लें चले, उसकी इज्जत, उसकी असमत, उसकी इस्मत, उसकी सारी चीज़ें इस बहुत कीमती हैं। लेकिन जब एक लड़की ने कई लाख का जेवर भी पहनना हो तो वो ज़्यादा उसकी हिफाजत की ज़रूरत होगी ना, ऐसी है ना। अमूमन लोग बहुत परेशान होते हैं जब जेवर पहने होते हैं कि हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि उसके पास कीमती चीज़ है। अब इस चीज़ को आप लाइए इस बात पे कि हम सब पैदाइशी मुसलमान हैं, हम मुसलमान घरों में पैदा हुए, हमारी ज़िंदगी के अंदर किसी ना किसी तरह का इस्लाम तो था ही, लेकिन अब आ गए हम कुरान के साथ, जुड़ गए हैं इस्लाम से, हमें अल्लाह की मर्ज़ी पता चली। अब रबीउल अव्वल आएगा तो हमारे दिल में तड़प आएगी कि अल्लाह के नबी को के बारे में जाने, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, क्या था, यानी अब हम सीधे रास्ते पे आ गए हैं। तो बस समझ लें कि अब आपके अंदर हर दिन जो खैर के जज्बे आ रहे हैं ना, तो आप हो गई हैं बहुत कीमती। और आपको तो पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये गैब में अल्लाह ने छुपा दिया। हर दिन आपके नामे आमाल में बहुत सारी नेकियां जा रही हैं। बस अगर अभी आज ही के सबक को देखें, कितने लफ्ज़ हमने पढ़े, लफ्ज़ी तर्जमा दोहराया, हर लफ्ज़ पे 10 नेकियां करके गिन लें बाद में कितने बने, फिर उसकी तिलावत सुनी, हर लफ्ज़ पे अजर, अब लफ्ज़ तर्जमे को खोल रहे हैं पढ़ रहे हैं ना। तो आप हर क्लास के बाद आप ज़रा खुशी से, जिसको कहते हैं ना कि अपनी पीठ पीठ थपका करें कि माशाल्लाह काफ़ी अमीर हो गई हूँ, चेक जाता है ना जैसे बैंक में, तो खुश होते हैं लोग कि इस हफ्ते की पे चली गई है। आप भी क्लास के बाद खुशी महसूस किया करें कि अब तो मेरा नामे माल बहुत भारी हो रहा है, दिन ब दिन आप अमीर होती जा रही हैं। जितनी आप अमीर होंगी ना, उतना शैतान आपके ऊपर बड़ा शैतान मुसल्लत करेगा। जैसे गरीबों के घर में क्या आएगा कोई चोरी करने, लेकिन बड़े लोग, बड़े बड़े विलास, बंगला, बंगलों में जो लोग होते हैं उनके पीछे बड़े बड़े ख़राब लोग लगे होते हैं। तो जब आप कुरान पे नहीं आते ना, तो शैतान आपसे काफ़ी मुतमईन होता है, वो कहते हैं ये तो पहले मेरी बहन है, ये तो पहले मेरा भाई है, ये तो देखो कितनी फजूल खर्ची करती है, और कुरान में आता है कि फजूल खर्च जो है वो शैतान के भाई हैं। देखो एक शादी आती है, ये लाखों रुपया लगा के उड़ा के आती है, इस पर फिक्र ना करो। लेकिन जब एक बंदा अल्लाह की मर्ज़ी की तरफ आता है ना, जब उसको दिन ब दिन पता चलता है कि अल्लाह ताला उससे क्या चाहता है, किस तरह से चाहता है, तो फिर शैतान उसके पीछे ज़्यादा पड़ता है। ऐसा बंदा अगर फिसल जाता है ना, तो अल्लाह ताला उसको ही फरमा रहे हैं कि देखो मिम बादी मा जातकुमुल बय्यिनात, सब कुछ आ गया तुम्हारे पास, अल्लाह ने इतनी हिदायत की चीज़ें तुम्हें दे दी, तुम्हें अल्लाह ताला ने हक और बातिल का फ़र्क बता दिया। अभी भी तुम्हारी उम्र की कितनी लड़कियां हैं जो अपनी ज़िंदगियों को ज़ाया कर रही हैं, सो सो के गुजार रही हैं, फिल्में देख के गुजार रही हैं, सिनेमा हॉलों में जाती हैं, तुम्हें तो अल्लाह ने दलील दे दी। अब अगर तुम्हारा एटीट्यूड वही हुआ जो उनका है, तो याद रखो फिर अल्लाह ग़ालिब और हिकमत वाला है। किस बात पर ग़ालिब है? कि तुम्हें पकड़ ले। क्योंकि अनजान शख्स गलत काम करता है तो उसकी कम पकड़ होती है, जानने वाला करे तो ज़्यादा पकड़ होती है। अल्लाह ताला तुम्हें खूब अच्छी तरह पकड़ सकता है, क्योंकि नेमत जितनी बड़ी होती है ना, उतनी बड़ी उस नेमत की जवाबदेही भी होती है। अल्लाह की ज़ात ने हमें दुनिया में भेजा था एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर, शहादत हक की जिम्मेदारियाँ दी थी तुम्हें। अल्लाह ने तुम्हें इंसानों के लिए राहबर और रहनुमा बनाकर भेजा था। तुम उम्मत मुस्लिमा के शख्स हो, लेकिन तुम इस हिदायत की नेमत से अगर खुद ही पीछे हटे, तो बताओ दूसरों को कैसे बुलाओगे? जो बंदा खुद ही अपना काम छोड़ दे, फिर उसको दूसरे को वो कैसे दावत देगा? तो इस वक्त हम सबको इस वक्त अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि क्या हमने अल्लाह की नेमत हिदायत को ज़ाहिर होने के बाद, अल्लाह की मर्ज़ी को जानने के बाद, अपने बारे में कुछ संजीदगी से सोचना शुरू किया? क्या अभी भी हम ख्वाहिशों के ग़ुलाम हैं? क्या अभी भी हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ शैतान की मर्ज़ी मानते हैं? तो याद रखो फिर अल्लाह ये मनसब छीन भी लेता है। जब बंदा किसी नेमत की सही मानों में कदर नहीं करता ना, तो अल्लाह ताला उससे ये हटा लेता है। आज के मुसलमानों को देखिए तो इस बात की एक मुंह बोलती तस्वीर दिखते हैं। बोन मुस्लिम जो हैं वो शादियां कर रहे हैं और खा रहे हैं और पी रहे हैं और अपने कारोबार बढ़ा रहे हैं, अल्लाह उनको हटाकर दूसरों को ले आता है, क्योंकि अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। बाकी रह गई बात कि तुम्हें इतना कुछ जानने के बाद अभी तक भी समझ नहीं आ रही, तो क्या तुम क़यामत के मुंतज़िर हो? इस बात को आयत 2:10 में कहा गया, हल यंजुरूना, नहीं वो इंतज़ार करते। मुराद क्या है कि वो इंतज़ार करते हैं? इस्तफ़हाम बराए इनकार, यानी क्वेश्चनिंग स्टाइल है, जिसमें बात का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा नहीं कर रहे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इतना कुछ जानने के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर ये लोग इस बात को नहीं मान रहे, तो इसकी वजह क्या है? कि हल यंजुरूना इल्ला अय्यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल गमाम, इन सारी नसीहतों और हिदायतों के बाद भी अगर लोग सीधे ना हों, तो क्या अब वो इसके मुंतज़िर हैं कि अल्लाह ताला बादलों के अंदर से आए और फरिश्ते उसके साथ हों और सारी बातों का फ़ैसला हो जाए? वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, और बिल आखिर सारे मामला तो अल्लाह ही की तरफ आने हैं। बहुत ही ज़्यादा शोर को बेदार करने वाला स्टाइल है। अल्लाह सुबहान तआला इस आयत में जो थीम हमको देते हैं वो क्या है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने में देर ना करो। अगर अभी कुफर में हो तो डोंट डिले योर इस्लाम। ये ना कभी और सोच लूँ, अभी और काम कर लूँ, अभी और कर लूँ, बल्कि अल्लाह की ज़ात उसको बताते हैं कि क्या तुम क़यामत के मुंतज़िर हो। यहाँ जो लफ्ज़ आ रहा है ना कि हल यंज़ुरून इल्ला यातियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुलालिम मिनल ग़मामी वल मलाइकत व कुदी अल अम्र, तो बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद क़यामत का दिन है, क्योंकि क़यामत के दिन ये सब कुछ होने वाला है। आप आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन पे तशरीफ़ लाएंगे और अल्लाह ताला का अर्श जो उठाने वाले फ़रिश्ते अल्लाह ताला के अर्श को पकड़े हुए होंगे, सारे गैब के पर्दे खुल जाएंगे। एक इससे तो आम तौर पे मफहूम यही मिलता है। दूसरा इससे मुराद ये है कि हर बंदे की अपनी मौत का वक्त। हदीस में आता है कि जब एक बंदे की मौत का वक्त आता है, तो उसको हदे निगाह तक फरिश्ते दिखते हैं। अमूमन हम किसी मरने वाले के लिए क्या कहते हैं? कि उसकी आंखें बंद हो गई। हालांकि आंखें बंद नहीं होती, खुलती हैं, तभी तो उसको वो हकीकतें नज़र आ रही होती हैं जो इस वक्त मुझे और आपको नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या ये ना मानने वाले मौत का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ये मौत के फरिश्ते को देखकर पलटेंगे, फिर कहेंगे कि थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी हम और काम कर लें, लौला खरतनी लाजल इन करीब? क्या इनकी ये मर्ज़ी है क्या इनको ये चाहिए कि मौत आ जाए या फिर क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं? इससे क्या पता चलता है कि इस दुनिया में किसी इंसान की सारी आजमाइश इस बात की है कि क्या वो बिन देखे अल्लाह से डरता है? आप एक लम्हे के लिए ज़रा इमेजिन करें, सिर्फ बात को समझने के लिए, अगर हमें अल्लाह ताला एकदम नज़र आने लगे, आसमान का पर्दा हटे और अल्लाह जल्ला जलालहू का दीदार हो जाए, आप ज़रा सोचें होगा क्या? क्या कोई गर्दन अकड़ी रहेगी? क्या फिर भी गुनाह होंगे? आप इसको इस तरह सोच लें कि आप बड़े मस्ती में जा रहे हैं, ट्रेन अपनी गाड़ी चलाते हुए रोड पे, स्पीड लिमिट थी 60 माइल, आप जो उड़ा रहे थे 90 में 80 में, उन्होंने कहा सीट बेल्ट बांधे, आप कहते देखेंगे जो होगा, इतने में आपको टुन टुन करती पुलिस मैन की गाड़ी दिखे, दिखे तो छोड़ें, सिर्फ इमेजिन करें आप क्या हाल होता है, ना चाहते हुए भी हाथ सीट बेल्ट पे जाते, एक्सीलेटर को कम करते। मैं किसी सिस्टर के साथ एक दफ़ा, वो ड्राइव कर रही थी तो मैं उनके साथ थी अमेरिका में, तो एकदम उनके गाड़ी में से ना बीप की आवाज़ आई ना, जैसे टुन टुन है, तो मुझे समझ नहीं क्या हुआ, तो मैंने कहा कि ये क्या है, तो कहने लगी कि ये एक छोटा सा पुर्जा लगाया हुआ है, तो जूँ ही पुलिस की गाड़ी को करीब रेंज में आती है ना तो ये बोलना शुरू हो जाता है, तो जब यूं ही ये बोलता है तो मैं अपनी स्पीड कम कर लेती हूँ कि पुलिस साहब पकड़ ना ले। मैंने कहा ये बोलता है पुलिस की गाड़ियों को देख के, हमारे अंदर का नेविगेशन सिस्टम क्यों ख़राब है? हम क्यों अल्लाह ताला की ज़ात को महसूस नहीं करते? हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं गुनाह की महफिलों को? हमें कैसे मज़ा आएगा? क्या हम अल्लाह ताला के फरिश्तों से लिहाज नहीं करते? कहा तुम्हें नहीं पता, तुमने जाना तो उसी की तरफ है, मत देर करो, मत ये कहो कि अभी ज़रा मेरी खाला इस्लाम पे पूरी तरह आ जाए तो मैं आऊँगी, मेरी फूफो आ जाए, मेरी बहन आ जाए, मेरी माँ आ जाए, सारे आ जाएँ या सारे ना आए, तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, इसलिए कि वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, आना तो अल्लाह की तरफ है, तुम्हारा मामला तुम्हारा केस बिलाखिर अल्लाह ताला की कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर पता लग जाएगा तुमको कि तुमने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी, क्या करके आए थे, तुम्हारे साथ कैसे मामले थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कितनी नेमतें दी थी, कितना कुछ दिया था, तुम फिर भी नहीं मानते, देखो अल्लाह के हुक्मों पे अमल नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे वो अनर मिलेगी जो अल्लाह ने तुम्हें देनी थी। हम कहते नहीं हम मुसलमान हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और ना हम उम्मत मोहम्मदिया में से हैं, और माशाल्लाह रबीउल अव्वल का महीना करीब है और हमने मिलाद मुनक्कद करवाने हैं, हमने सीरत कॉन्फ्रेंसेस रखनी है, हमारा क्या बिगड़ना है जी खुशफहमी मुसलमानों को, हमें कौन लेके जाएगा? मैं थानेदार का रिश्तेदार हूँ, थानेदार साहब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पे कौन हाथ डालता है? आज ना चाहते हुए भी मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को एक ढाल बनाते हुए ये सोच के बैठे हुए हैं जो करना है करो, आएगा कोई फरिश्ता तो फौरन कहेंगे अल्लाह के नबी ज़रा इसको बता दे मैं कौन हूँ, फिर हम सोचते हैं अल्लाह के नबी आएंगे, ओ फरिश्तो ये बड़ा सूद खोर था, ये बड़ी शराब पीता था, लेकिन तुम इसको छोड़ दो, और इसको तो अपनी बच्ची की शादी में भी उबटन मेहंदी बहुत कुछ करना है, और अभी देखो ना अभी तो इसने भी वो कितनी किस्तें चुकानी है, क्या तुम इसको छोड़ दो, इमेजिनेशन में यही आता है ना, बड़े से बड़ा काम नबी के धड़ल्ले पे करेंगे। आप देखिए कि जिसने किसी से वो इट सिट की होती है ना एयरपोर्ट पे, तुम्हारा वज़न निकलवा देंगे, वो अंधों की तरह शॉपिंग करता है, भाई इतना सामान लेके कैसे जाने का, ना फिक्र ना करो, किया वह फ़ोन देखना एयरपोर्ट पे आ चुके होंगे फलां साहब, थानेदार की पुश्त पनाही पे लोग कितने कितने कत्ल कर देते हैं, क्या हमने अल्लाह के नबी के नाते से अपने आप को मुसलमान करार देते हुए या ना देते हुए इसी किस्म की बातों का सोचा हुआ है? खुशफहमियाँ उतारी जा रही हैं कि मुसलमानों ज़रा सोचो तुम कौन हो, वही सबक याद दिलाया जा रहा है कि तुम आज अपने आप को अगर चोज़न पीपल में से समझते हो तो जाओ ज़रा पिछले चोज़न पीपल से बात कर लो, मुसलमानों को इशारा दिया जा रहा है कि सल बनी इसराइला कम आते ना हो मिना आयातिम बेशिना, तुम्हें अगर अपने से पिछलों के हालात से कुछ नसीहत लेनी है तो जाओ फिर बनी इसराइल से पूछ लो, कैसी खुली खुली निशानियां हमने इनको दिखाई थी, कैसे मूसा अलैहिस्सलाम असा लेकर आए जो बाद में सांप में बदल जाता था, उसी असा से दरियाओं में रास्ते बन गए, उनका हाथ किस तरीके से चमकने लगता था, पत्थरों से अल्लाह ताला ने पानी के चश्मे निकाले, बादलों से साया किया, मनोसलवा उतारा। अल्लाह की कुदरतें कितनी बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कितना कुछ अल्लाह ने कल बनी इसराइल को दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? वमन युबद्दिल नेमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु, और जो कोई अल्लाह की नेमत को पाने के बाद उसको बदल दे बदबख्ती के साथ, तो ऐसे लोगों का हाल क्या है? फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला जल्द अज़ाब देने वाला है। खुशफहमियाँ कर दी, जिसको आप कहते हैं ना कि सारी नींद खुल गई, सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अल्लाह ताला बताते हैं कि तुम आज जिस बात पे मान करते हो, कल यही मान तो बनी इसराइल को था। पहला पारा हम पूरा इसी थीम पे पढ़ चुके कि बनी इसराइल को ये बड़ी खुशफहमी थी कि चूँकि हम नबियों की नस्ल से हैं, हज़रत इब्राहिम आएंगे, हमारी सिफारिश कराएंगे, क़यामत के दिन हम हंस के दिखा देंगे अल्लाह को, क्योंकि हम अल्लाह के लाडले और अल्लाह के प्यारे हैं। कहा अच्छा, जहाँ से उन्होंने ठोकर खाई तुम भी वहीं पे पहुँच गए हो। एक हदीस का खुलासा क्या है कि असईदु ममवईद बग़ैर ही, अक्लमंद शख्स वो है जो दूसरे के हाल से नसीहत ले। आप इमेजिन करें कि आप गाड़ी चला रहे थे, आपसे आगे भी एक और गाड़ी है, थोड़े से फासले पे आपने दूर से देखा कि वो गाड़ी एकदम स्पीड ब्रेकर से लगी और उछल के गई। आपको क्या करना चाहिए? अपनी स्पीड को कम करें, उस पत्थर को या उस स्पीड ब्रेकर को अवॉइड करते हुए रास्ता बदल लें, तो आप बच जाएंगे। आपके सामने एक बंदा ठोकर खा के गिरे, आप फिर उसी रास्ते पे चलेंगे तो क्या आपको ठोकर नहीं लगेगी? एक केले के छिलके से आपके सामने फिसला, फाइन जलल तुम, तो क्या आप उसी केले के ऊपर से फिसले बगैर बच जाएंगे? सारी खुशफहमियाँ इसमें दूर हो जाती हैं कि कल बनी इसराइल को अगर मनसब इमामत से हटा दिया गया, तो क्या तुम अपनी इन्हीं खरमस्तियों और इन्हीं करतूतों के साथ इन चीज़ों पे लगे रहोगे? कभी सोचा तुमने? अल्लाह को नाम प्यारे नहीं है। देखिए कि आप इसको दुनियावी मैदान में देखिए, आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप स्कूलों में जाते, कॉलेज में जाते, क्या कोई यूनिवर्सिटी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी सिर्फ आपका नाम देखकर, आपके बाप का नाम देखकर आपको डिग्री दे देती है? आप कहें कि मेरा बाप डॉक्टर है तो मुझे भी मेडिकल की डिग्री दे दो, नहीं कोई देगा। आज हम उम्मत मुस्लिमा ने जो अपना हाल हशर कर लिया है ना, वो वही बात के जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वजा में हो तुम नसारा, कोई हमारे तरीके या हिंदुओं से मिलते, कुछ नसारा से मिलते, हम जिस जगह जाते हैं ना उनके रस्म व रिवाज ले आते हैं और बुरे लेते हैं और अच्छे अपने छोड़ आते हैं। हमने तो अपनी अच्छाइयाँ कब की छोड़ी हुई हैं, खाली हो गए कंधे, तभी तो दूसरों के बोझ उठाए फिरते हैं ना। हज़रत उमर फ़ारूक से हमसे ज़्यादा गैर मुस्लिमों ने सीखा। आज जो भी ये सिस्टम्स आपको दिखते हैं सोशल सिक्योरिटीज़ के, आपको पता है कि इंग्लैंड में जो फलाही रियासत का नज़रिया चला, ये पूरा यूरोप से सिलसिला शुरू हुआ था कि ये सोशल हेल्प देना और तालीमी निज़ाम को फ्री करना। तो एक कोटेशंस मैंने पढ़ी थी कि जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये आइडिया उमर फ़ारूक से लिया। उमर ने क्यों अमन कायम किया? क्योंकि उन्होंने एक फलाही रियासत कायम की। आज मुसलमानों को ये भी नहीं पता होगा कि हज़रत उमर का दौरे खिलाफत कितना था और कहाँ से कहाँ उस दौर में हुकूमत फैली, गैरों ने उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ ली। आपको पता है कि आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है ना, उसका इंडेक्स, बस आप ये समझ लें, बुखारी मुस्लिम जो सिया सित्ता जो छः बड़ी बड़ी किताबें हैं ना हदीस की, उसका इंडेक्स कि किस टॉपिक की हदीस कहाँ है, ये मिफ्ताहुल कुनूज़ुस सुन्ना के नाम पे एक अरबिक बुक की सूरत में नॉन मुस्लिम्स ने कंपाइल किया। कभी आप में से किसी ने पहले इसका नाम सुना? माशाल्लाह आप सारे अच्छे घरों के लोग हैं। हम मुसलमान कहाँ थे कि अल्लाह के नबी की किताबों को लिख जमा करते, टॉपिक वाइज अलग करते? आपको कोई हदीस किस टॉपिक की देखनी है, आप उस इंडेक्स को खोलें और देखें कि बुखारी में इस टॉपिक की हदीस कहाँ है, मुस्लिम में कहाँ है, इब्ने माजा में कहाँ है, और वो सब पाइल अप करने वाले नॉन मुस्लिम्स हैं और उनकी लाइब्रेरी में ये किताबें पढ़ी हुई हमारी हालत पे मातम करती हुई दिखती हैं। हम रोने वाले लोग हैं। अल्लाह करे मैं युबद्दिल नेमत अल्लाह ही मिम्बादी मा जातू, नेमत मिली उसको इनकार कर दिया। आपको तो कोई गिफ्ट दे तो आप कहते हैं ओ थैंक्स, उसको तो शुक्रिया करके ले लेते हो, ना पसंद आए ना इस्तेमाल करें, उससे छुपा के कहीं रख लेते हैं, सामने उसके नहीं उसको फेंकते हैं। हम तो इतने एटिकेटेड लोग हैं, कोई एक अच्छी चीज़ दे दे, थैंक यू कार्ड डाले बगैर हमें चैन नहीं आता। तुमने अल्लाह की नेमत हिदायत, नेमत इमामत को इस तरह उतार के फेंका, तुम इस दुनिया दनी के गुलाम हो गए, तुम इस तरह किनारों पर रह के दीन पर रहे, तुम्हें इस ख्वाहिशात की मोहब्बत ने ले लिया, तुम ज़मीन से लिपटे, तुम इतना लिपट गए, तुम्हें बड़े मकासद भूल गए। देखिए ज़िंदगी में जिस चीज़ को आप मकसद बनाते हैं ना, आप उसी के लिए स्ट्रगल करते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं नस्बुल आइन, नसब करना कहते हैं गाड़ना, आइन आँख को, यानी आप अपनी आंखें गाड़ते हैं। बस आप देखिए कि मैं इस बल्ब को देख रही हूँ ना, अब मेरी आंखें वहाँ हैं तो मेरी सोच यहाँ तक जाएगी, और अगर मैं अब यहाँ नीचे देखना शुरू करूँ तो मुझे कारपेट दिखेगा। हमारी जहाँ पे नज़र जाती है ना, जो हमारे गोल्स होते हैं वही हमारा रोल होता है। आवर गोल्स डिफाइन आवर रोल्स, जो हमारा एटीट्यूड होता है वही हमारा अल्टीट्यूड बन जाता है, एक वक्त आता है। हम मुसलमानों का तो गोल ही नहीं है ये कि हम कभी अल्लाह के चुने हुए लोग थे, अल्लाह ने हमें दुनिया में एक बहुत अहम काम के लिए भेजा था। हमें तो लगता है मैं सिर्फ खाने खाने और पकाने के लिए भेजा था। कभी आपने छोटी छोटी बेलें देखी होंगी, समझते ना बेल, आप एक धागा लेते हैं ना तो उस बेल को ऊपर छत के साथ बांध देते हैं, कुछ महीने के बाद क्या होता है, कोई आप में से बताए जिसने एक्सपीरियंस किया हो। जी, वो बेल छत पे चली जाती है, फिर एक वक्त आता है पूरी दीवार उस बेल की बनती है। आप उस डोरी को काटें, बेल जहाँ थी वहीं छोड़ दें तो क्या होगा, वही बेल ज़मीन के ऊपर फैलने लगती है। ये है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर गोल सेटिंग की अहमियत। हम जितना बड़ा अपना गोल रखते हैं ना, हम उतने एफिशिएंट हो जाते हैं। आपने दो लोगों का घर का खाना पकाना है ना, तो शाम तक मुश्किल से वही पकता है, और आपको पता हो ना कि आज मेरे घर में 50 लोगों ने आना है, तो आप देखेंगे आप 50 का खाना पका के खुद साफ़ सुथरे होके घर साफ करके बैठे होंगे। हमारे अंदर एनर्जी आती है। मुसलमानों ने गोल ही नहीं बनाया। रोना जो आता है वो ये कि हमने तो ये गोल ही नहीं बनाया कि हम वर्ल्ड लीडर थे। सल बनी इसराइल, जाओ पूछो इन बनी इसराइलियों से, तुम्हारे तो बहुत ही करीब है, पूछो तो सही। कम आते ही ना उमिन आयतें बैयिना, कितनी हमने खुली खुली आयतें दी थी, निशानियाँ दी थी, नेमतें दी थी, तुम्हें नहीं दी? क्या उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना कोई छोटी नेमत है? अल्लाह ने अपना आखिरी नबी दिया हमें, कभी इमेजिन करें, चुटकी काटें खुद को और पूछें किसी बुतपरस्त घर में पैदा हो चुकी होती, उसको कंपेयर करें उम्मत मोहम्मदिया में से होने से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कम आते ही ना, कितनी बड़ी नेमत दी कि बगैर चोटें खाए, बगैर कोयलों पे से अपनी चर्बी को पिघलाए, हम आज मुस्लिम होने का दावा करते हैं। लेकिन हमें कदर कोई नहीं, हम ना कदरे लोग हैं। हमें जो नेमत मुफ्त में मिलती है, आसानी से मिलती है, हम कहते हैं छोड़ो ये तो इनकी कोई मजबूरी है, हमें तो वो ढूंढना है जिसके पीछे हम फिरें। आज अल्लाह का ये वादा कि फ़इन्नल्लाह शदीदुल अक़ाब, ये बनी इसराइल के हक़ में नहीं, हम मुसलमानों के हक़ में फिट हो रहा है। ख्वाहिशों के गुलाम, जिस तरह की शादियां हम करते हैं ये गैर मुस्लिम वैसी नहीं करते, वो तो करते ही नहीं शादी। हम करते भी हैं तो इस तरह की करते हैं कि निकाह हो मिन सुन्नती, और सारी सुन्नतें उसी शादी में टूटती हुई दिखती हैं। किसी को बहुत बड़ा आप काम दें और वो छोटा सा काम करके वापस आ जाए तो आपको गुस्सा आता है। आप बच्चे को ही पैसे दें, अपने बेटे को दें कि जल्दी से जाओ फलां चीज़ लेके आओ, मैंने खाना पकाना है, खाना रुका हुआ है, आई ना बाद में होते चलो उन पैसों की तो मैंने आइसक्रीम लेके खा ली थी, गुस्सा आता है ना। छोटी छोटी मिसालों से देखा करें, और अल्लाह की निगाहों से ख़ुद को हम देखें कि आज हम मुसलमानों के ऊपर जो ये गज़ब टूट रहे हैं ना, कभी तूफ़ानों के और कभी जलजलों के और कभी हुक्मरानों के और कभी महंगाई के, ये क्या है? वमन युबद्दिल निअमतल्लाह मिन बादी मा जातहू, अल्लाह नेमते आज भी देता है, कमी तो नहीं है, सबसे ज़्यादा नेमते हमारे पास हैं, लेकिन नकदरी हमारे पास है। अब वजह बताई जा रही है कि क्यों कौमें बड़े मकासद के लिए नहीं जीती, क्यों बनी इसराइल ने अल्लाह की नेमत को ठुकराया, और आज उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए मुसलमान भी इसी काम में लग गए। फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुनिया, जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की इनके लिए तो दुनिया की ज़िंदगी बड़ी महबूब और दिल पसंद बना दी गई। नोट कीजिएगा, ये दुनिया खूबसूरत किसको लगती है? काफिर को, मोमिन को तो नहीं लगती। हदीस में आता है क्या दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, प्रिजन है ये। जैसे कैद खाने में कैदी बेचैन होता है ना कि कब मेरी कैद ख़त्म हो और मैं जाऊं, एक सच्चा मोमिन तो इस दुनिया से इस तरह गुजरता है कि जल्दी से जल्दी मेरी दुनिया ख़त्म हो और मैं असल जन्नतों में जाऊं, कि मैं किस तरीके से इस दुनिया से निकलूं। लेकिन ये दुनिया फन प्लेक्स उसको लगती है, अल्लज़ीन कफरू, जो लोग कुफर पे होते हैं उनको बड़ी प्यारी लगती है। वो हर बात पे वो और हाय और खूबसूरत बातें करते हुए दिखते हैं। उनको लगता है कि हाय दुनिया कितनी प्यारी है, हाय डिज्नीलैंड जाएंगे, हाय लॉस वेगास जाएंगे, हाय दिस एंड दैट। कितने मुसलमान ख़ानदान हैं जो अपने बच्चों से झूठे वादे करते रहते हैं, कोई बात नहीं इस छुट्टियों में हम आपको डिज्नीलैंड ले जाएंगे, आपको ले जाएंगे हम नेवाडा। एक किसी का आर्टिकल ईमेल में मुझे किसी ने भेजा, उसका टॉपिक क्या था कि मैं हेल के पास गया और वहाँ से शुक्र है वापस आ गया, यानी कि मैं जहन्नुम में से वापस आया हूँ। टॉपिक बड़ा अजीब था, तो मैंने देखा कि करूँ है क्या। तो उसके अंदर एक जर्नलिस्ट उसकी आप बीती लिखी हुई थी कि किसी भी अपने काम के सिलसिले में उसको निवाडा, यानी ये डिज्नीलैंड जहाँ पे है लॉस वेगास, वहाँ जाना पड़ा। कहते कि मैंने वहाँ जहन्नुम देखी। क्या जहन्नुम थी? कि लोग जुए के नाम पे अपने घरों के रेंट वहाँ लगा रहे हैं, अपनी बीवियों को बेच रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं, यानी वहाँ गैम्बलिंग की मैंने वो सूरतें देखी कि क्या हेल होगी, कि मैंने लोगों को वहाँ रोते कराहते देखा और अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ से वापस आ गया। मैं उसको पढ़ के सोच रही थी कितने मुसलमान माँ बाप है जो ख्वाहिश रखते हैं कि हम अपने बच्चों को वहाँ एक दफ़ा तो ले जाएँ। क्या याद करेंगे बच्चे कि कैसे माँ बाप थे जो हमें डिज्नीलैंड नहीं लेके गए। इतना वहाँ जुआ चलता है, इतनी वहाँ शराब चलती, इतना नंगापन चलता है। जुज्जिना लिल्लज़ीन कफरुल हयातुद दुनिया, जितना कुफर ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा हमें दुनिया खूबसूरत लगेगी। देखिए कि अल्लाह ने बनाई है बड़ी प्यारी है, सच है, लेकिन इसकी खूबसूरती काफरों के लिए किस रंग में फितना बनती है। यहाँ ये टॉपिक असल में है नहीं, ये हम करेंगे बस थोड़े ही दिन के बाद। सूरत आल इमरान में हम पढ़ेंगे जुज्जिना लिन्नास हुब्बु शहवाती, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ रही कि क्या हम दुनिया से मोहब्बत नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं, ये एक अलग इशू है। इस वक्त जो बात है उसको आप ज़रा फोकस में रखें ताकि हम अपने टॉपिक से ना हटें। का जुज्जिना लिल्लज़ीन कफरुल हयातुद दुनिया, जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी बड़ी महबूब और दिल पसंद है, और इसी मस्ती में आके वो करते क्या हैं, वयस्खरून मिनल्लज़ीन आमनू, और वो ईमान वालों का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखो बोरिंग पीपल, कोई फन ही नहीं इनकी ज़िंदगी में, कोई ख़ुशी नहीं इनके पास, कुछ है ही नहीं। और वल्लज़ीन तक़ऊ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, हकीकत क्या है कि ये लोग क़्यामत के दिन इनसे ऊंचे दर्जों पे होंगे। ये जिनका आज हंसी करते हैं ना, ये मुस्लिम, ये पाकी, ये फंडामेंटलिस्टिक, ये टेररिस्ट, कल क़्यामत के दिन अल्लाह इनको बड़े रैंक्स देगा, ये बड़ी बुलंदियों पे होंगे। इसका भी तذکرہ में सूरत कुरान पाक में मिलता है। सूरत फजर की आखिरी आयतों में अल्लाह ताला ने इस बात को पेश किया कि आज हम ईमान वालों को ऊंची मसनदों पे बिठाएंगे और उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कुफार थे वो जहन्नुम में जल रहे हैं। का वल्लाहु यरज़ुकु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क अता करता है। यहाँ पे असल में एक हिसाब से वो टॉपिक पूरा हुआ जो या अय्युहल्लज़ीन आमनू फिस्सिल्मी से शुरू हुआ, कि दुनिया की ज़िंदगी खूबसूरत लगती है इसीलिए लोग पूरे के पूरे दीन में नहीं आना चाहते। और काफिरों पर हंसना, मुसलमानों पर हंसना सिर्फ काफिरों का काम नहीं है, हम तो मुसलमान भी इसमें काफ़ी हैं। कितने लोग हैं हम मुसलमानों में से जो सिर्फ इसलिए दीन पर अमल नहीं करना चाहते पूरा कि लोग मजाक उड़ाएंगे, कितने लोग हैं? कई लोग हैं वो अपने दिल से इस्लामिक हाल हुलिये को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं फिर लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर बंदा शर्मिंदा हो जाता है, हाय क्या होगा, कैसे होगा। तो इस तरह एक छोटा सा सवाल बन जाता है कि कोई दीन की वजह से हमारा मजाक उड़ाए तो हम उसका क्या रिस्पॉन्स दें, रोने लगे। मसलन आप ही देखें अपने आप को कि आप स्कूल में गई, नमाज का वक्त आया, आपको पता है कि नमाज कज़ा हो जाएगी लिहाजा मुझे तो पढ़नी है। अब आप पढ़ने लगी, इतने में कोई पास से गुजरा, उसने आपका मजाक उड़ाया, क्या तुम एक्सरसाइज कर रही हो, क्या बात है, ये कैसा दीन है कि दिन में इतनी बार नमाज पढ़ाए। अब एक सूरत क्या है, आप रोने लगे, हाय मुझे कह गई, मारो, हाय रो रो के बुरा हाल। फिर आप शर्मिंदा। नहीं, मैं तो जस्ट ऐसे ही ज़रा स्ट्रेच ले रही थी और बस मैं तो अपने आप को सेट कर रही थी। ये रिस्पॉन्सेज होते हैं। और इसके ऑपोजिट आप कहते हैं यस आई वॉज प्रेइंग। भाई क्यों प्रे कर रही थी? इसलिए कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही थी। जब भी कभी किसी काम को करने के बाद कोई आपका मजाक उड़ाए ना, तो फौरन आप उसके ऊपर नंबर एक डिफेंसिव ना हो, ऑफेंसिव हो। शर्मिंदा होने की बजाय प्राउड फील करें। यस आई एम अ मुस्लिम। यस ऑफ कोर्स मुस्लिम डोंट ईट पोर्क। यस वो नहीं खाते। क्या तुम रोज़ा रखते हो? हाय तुम रोज़ा रखते हो? यस वी फास्ट। आप देखिए कि किसी का ऑपरेशन होता है, उसको 12 घंटे पहले ही भूखा रखना शुरू कर देते हैं, कोई तरस नहीं खाता। कहते हैं यस ऑफ कोर्स इट्स रिक्वायरमेंट। यानी कभी भी अपने दीन पे शर्मिंदा ना हो। मजाक उड़ाते हैं वो, दुनिया के नशे में मस्त हैं, उनके ग्लासेस का कलर चेंज हुआ हुआ है, उनको हर चीज़ वैसी ही दिखेगी। आप उसको छोड़ें, बल्कि आप उस मंजर को सामने लाएं कि कल आप उस जन्नत में हैं जहाँ से कुफार को देखा जा रहा है, और फिर उस वक्त वो हसरत करेंगे कि हाय अफसोस ये हमसे इतने बुलंद दर्जों पे चले गए। अल्लाह ताला कहते हैं ये ऊपर होंगे। हदीस में आता है कि जन्नत ऊपर है और जहन्नुम नीचे है। आप इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे, मैं आपको बोझल नहीं करना चाहती वो सारे रेफरेंस लिखा के जो इंशाल्लाह कुरान पाक में ही आएंगे, कि अल्लाह ताला हमें वाकयात दिखाते हैं। सूरत आराफ में ये बात आती है, सूरह हदीद में आएगी कि जन्नती ऊपर से नीचे झांकेंगे तो जहन्नुम में उनको अपने दोस्त दिखेंगे, कहेंगे तुम यहाँ कैसे आ गए? कहेंगे हाँ हम तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, मैं काफिर था, मैं मुसलमान नहीं हुआ, मैं इस्लाम पे नहीं। सूरह मुद्दसिर में आता है कि अल्लाह ताला पूछेगा कि जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नुम में ले आई? तो कहेंगे यस लम नकु मिनल मुसल्लीन, हाँ भाई क्या करें हम नमाज़ें नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुत्तिमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नहूदु माल खाइजीन, और बड़ी बहसें करते थे बहस करने वालों के साथ। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। तो बात का खुलासा क्या है कि दुनिया एक जैसी नहीं रहती। आज अगर कोई ऊंचा है तो कल वो नीचे होगा। आज अगर आपको इस्लाम की वजह से थोड़ा सा अपना स्टेटस कम भी होता हुआ दिखे, आपको अपना आउटलुक थोड़ा कम लगे, तो क्या हुआ? ये तो डमी है, ये 4 दिन की बात है। कल आपका विला उस सबसे ऊंचा होगा, कल आपकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा होगी, कल आप इतनी खूबसूरत होंगी कि आप जब शरबत पियेंगी तो क्रिस्टल की डॉल की तरह आपके जिस्म में जहाँ से गुजरेगा ऐसे लगेगा जैसे सुर्ख डोरी जो है वो क्रिस्टल से गुजर गई। तो लिहाजा जिसकी नज़र आखरत पे रहती है उसको दुनिया के अंदर पेश आने वाली जो मुश्किलात हैं वो नहीं दिखती। यहाँ तक तिलावत सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला हम आगे चलेंगे।
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب